نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. اب یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی تنگ دست ہے یا مقروض ہے وہ اس آیت کو پڑھے گا, آیت نمبر 26 اور 27 بغیر حساب تک, قل اللہم سے لے کے, تو اللہ تعالیٰ اس کے حالات ضرور بدل دے. کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت معاذ جو تھے وہ ایک بار قرض کی شکایت کی تھی, وہ جمعے کی نماز پہ نہیں آ سکے تھے کیونکہ انہوں نے ایک یہودی کا قرض لوٹانا تھا اور وہ یہودی ان کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جب تک میرا قرض نہیں دو گے میں نے جانے نہیں دینی. تو اس پہ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ دعا سکھائی اور فرمایا یہ ایسی دعا ہے کہ تم پر احد پہاڑ جتنا قرض بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ادائیگی کا تمہارے لیے انتظام فرما دے گا. تو یہ بہت ہی زبردست دعا. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں اعظم ہے اس دعا میں. تو جن کو بھی ایسی رزق کی تنگیاں ہوں یا قرض ہوں تو ان کے لیے بہت اچھی یہ دعا. اسی طرح تبرانی میں بھی ایک روایت ہے کہ کیا میں تمہیں ایسی دعا بتاؤں کہ اگر تم وہ دعا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دے گا خواہ وہ گوہ شبیر کے برابر ہو. تو پڑھو اللہم مالک الملک اور بغیر حساب تک. یہ انشاءاللہ تعالیٰ دعا دیکھتے ہیں. قل کہہ دیجئے اللہم اے اللہ مالک الملک, اے مالک ملک کے, بادشاہت کے مالک. ملک ہے سلطنت, غلبہ, ملکیت, اختیار. جو انسان کا جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے نا, اس کا اختیار ہوتا ہے, فیصلے اس کے چلتے ہیں. تو مالک ہے تمام بادشاہت کا, ایسی کائنات کا اللہ تعالیٰ مالک ہے. سورج اس کا غلام, چاند اس کا غلام, تارے اس کے غلام, فرشتے اس کے غلام, سب کے اوپر وہ ایک تنے تنہا بادشاہ ہے. اور وہ جس کو چاہتا ہے پھر وہ بادشاہت دیتا ہے. تو تل ملک کا, تو دیتا ہے بادشاہت من تشاء جس کو تو چاہتا ہے, اس لیے کہ ساری بادشاہت تو اس کے پاس ہے نا, جس کو چاہے بادشاہ بنا دے. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوا دنیا میں لوگ بادشاہت کے لیے قتل و غارت کرتے ہیں, کوئی کسی سے جنگ کر رہا ہے, کوئی زبردستی قبضہ کر رہا ہے, یہ سب دنیا میں ہو رہا ہے نا. تو ہم سوچتے ہیں کہ اس نے اس سے چھین لیا, اس نے اس سے کر کے بادشاہت لے لی. وہ دنیا میں اسباب تو بنتے ہیں لیکن اصل فیصلہ اللہ ہی کا ہوتا ہے, فیصلہ اس کے پاس سے آتا ہے کہ کس نے بادشاہ بننا. تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے بادشاہت جس کو وہ چاہتا ہے, وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ, اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. اس دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نیچے گرا دیتا ہے, اور کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کچھ نہیں سمجھتے اور سوچتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کیا ہے اور یہ تو ہمارے گھر کے نوکر ہیں اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کو اللہ بادشاہت عطا کر دیتا ہے. خزانے سارے اس کے پاس ہیں. یہ جو بادشاہت کا خزانہ ہے, عزت کا خزانہ ہے, روزی رزق روزی کا خزانہ ہے, جتنے بھی یہ خزانے ہیں نا, صحت کا خزانہ ہے, یہ سمجھ لیں. ایسے آپ کو میں ایک مثال دیتی ہوں. دیکھیں مثلاً ہے کہ اگر ایک کمرہ ہے جس کی چابی میرے پاس ہے اور اگر آپ کو وہاں سے کوئی چیز چاہیے تو کیا ہوگا, आप मुझे कहेंगे कि कमरा खोलें तो मुझे वहां से चीज चाहिए। जब तक मैं कमरा नहीं खोलती तो आप वहां से चीज नहीं पा सकते। आपको अब कुछ लेना होगा तो आपको मेरे पास आना होगा कि नहीं आप चाबी लगाएं हम मेरे लिए ये चीज मुझे वहां से दें। अच्छा इसी तरह ये समझ लें कि जो खजाने हैं ना ये सारे इनकी चाबियां इनकी कुंजियां अल्लाह के पास हैं। जिसके लिए वो चाहे वो दरवाजा खोलेगा तो उसको मिलेगी वरना नहीं मिल सकती। ये आयात ना इंसान को दूसरे हर दर से बेनियाज कर देती हैं, हर जगह झुकने से बेनियाज कर देती हैं, क्योंकि हमें पता चलता है सारे खजानों का मालिक तो वही है। यही चीजें हमें चाहिए होती हैं ना, वो मुल्क चाहिए, बादशाह चाहिए, कहीं का इकतदार चाहिए, कहीं की कुर्सी चाहिए, कहीं बड़ा होना चाहिए, कहीं इज्जत चाहिए, कहीं सेहत चाहिए, कहीं रोजी चाहिए, यही चाहिए होता है ना इंसान को। इसी के लिए इंसान औरों के दरों पे जाता है, वहां पे माथे टेकता है, कभी किसी की खिदमत करता है, कभी किसी के आगे बिछ बिछ जाता है, कभी किसी की चापलूसी करता है, कभी किसी की खुशामद करता है। और नहीं कहीं पे भी नहीं तुम्हें जाने की जरूरत, ये सारे खजाने तो अल्लाह के पास है, उसके पास है सारी चाबियां। तुम्हें कुछ चाहिए ना तो जब तक वो नहीं दरवाजा खोलेगा अपने खजानों का तुम्हें नहीं मिल सकता। ठीक है। और देखिए तंजियाऊ का आया, लेने का वैसे कोई और वर्ड भी आ सकता था लेकिन तंजियाऊ आया है। मैंने आपको कहा ना खींच लेना छीन लेना, जान निकलने के लिए रूह के निकलने के लिए भी यही वर्ड आता है ना, क्योंकि रूह भी जिस्म से निकलना नहीं चाहती तो उसको खींच के निकाला जाता है। तो ये बादशाहत भी कोई देना थोड़ी चाहता है। कभी कोई देखा है जो बंदा खुद ही कह रहा हो कि मेरे से बादशाहत ले लो? नहीं, हर एक बादशाहत अपने पास रखना चाहता है तो वो छीन लेता है। यानी इंसान का कोई बस नहीं है कि वो अपने पास रख सके, जब उसकी मर्जी आए जब उसका वो चाहता है छीन लेता है, ले लेता वापस। इंसान जितना मर्जी जोर लगा ले कि नहीं मैंने नहीं देनी, कोई कुर्सी है कोई ओहदा है, आप बादशाहत को ये ना ना सिर्फ समझें कि बादशाहत पता नहीं मुझे पूरे मुल्क की बादशाहत मिल जानी है। नहीं, आपके घर की बादशाहत हो गई, आपकी कोई और आपको ओहदा मिला हुआ है, कोई और आपको कोई इज्जत का मकाम मिला हुआ है, कहीं पे भी पावर मिली हुई आपको, तो छीन लेता जिससे वो चाहता, जिसको चाहता दे देता और जब चाहता है लेता और जब चाहता देता है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं और आप कितने बेवकूफ हैं कि हम अपने आप को परमानेंट मालिक समझ लेते हैं किसी भी चीज का, कि बस ये मेरी चीज है तो अब मेरी है, कोई नहीं मेरे से ले सकता। नहीं, जो दे रहा है वो ले भी सकता है, दी भी तो किसी और ने है ना, तो जिसने दी है वो ले सकता। मेरे और आपकी ये जो हम अपनी अथॉरिटी समझते हैं, मिल्कियत समझते हैं, फिर हम सोचते हैं कि मेरी मर्जी चलेगी क्योंकि मेरी चीज है, तो ये किसने आपको कह दिया कि आपकी चीज है? नहीं, ये तो अल्लाह ने दी हुई है, ये तो अमानत है, कोई भी चीज आप ले लें। मालिकल मुल्क की मर्जी है तो आज आपको मिली हुई है, मालिकल मुल्क की मर्जी नहीं होगी तो छिन जाएगी, लूज हो जाएगी आपसे। क्या आप अपने सामने मिसालें नहीं देखते? बड़े बड़े लोगों की मिसालें देखते हैं ना, कितने ही लोग आपके सामने दुनिया में, अगर आपकी नजर है आप देख लें, बड़े बड़े मुल्कों के बादशाह थे और आपके सामने उनको फांसियां लगी, आपके सामने उनके इकतदार छिन गए, बहुत पावरफुल थे वो। किसी ने भी किया वो, हम इस चीज की उसमें नहीं जाते क्योंकि फैसला अल्टीमेट अल्लाह ही का है, किसी और का नहीं चलता। तो अब जब उसने दी है चीज, हम देखते हैं कि लोग आज तख्त पे हैं, कल तख्तादार पे हैं, कल गले में फंदा पड़ा होता। इसी तरह कोई नीचे आज फकीर है और फिर हम देखते हैं वो महलों में रह रहा। वक्त एक सा नहीं रहता, याद रखें। और ये भी समझ आ जाए हम सबको कि जो भी हमारी मिल्कियत में चीजें हैं वो हमारी मिल्कियत नहीं है, वो टेम्प्रेरी तौर पे अल्लाह ताला ने हमें उनका मालिक बनाया है। अब मसलन मिसाल के तौर पे देखें, एक कंपनी है, उसने अपने एम्प्लॉयज को गाड़ियां दी हुई हैं। अब वो एम्प्लॉयज कहने लगे तो गाड़ी हमारी है, कह सकते हैं हमारी गाड़ी, मगर है तो कंपनी की ना, कंपनी ने दी भी अकाल को कंपनी वापस ले लेती है, कई अपने कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स देती रहती है। तो आप वो कहें कि मैं तो अब जाए इस गाड़ी को कहीं मारूं, टक्कर लगाऊं, चाहे इसको बेच दूं, चाहे इसको खराब करूं, मेरी मर्जी, ऐसे तो नहीं हो सकता। बैक ऑफ हिज माइंड ये होता है कि ये कंपनी की गाड़ी है, हमें जो भी चीज मिली हुई है ना, वो मालिक अल मुल्क की दी हुई है, हम कैसे उस पर अपनी मर्जी चला सकते हैं? ये बताएं, ये जिंदगी किसने दी है, ये माल किसने दी है, ये वक्त किसने दी है, ये सलाहियतें एनर्जीज आपको किसने दी हैं? हाँ देखो तो सही कि अच्छा, फिर इंसान ना हमारे कॉन्सेप्ट्स देखिए यहां से पता चलते हैं। जब आपको कोई कहता है अपना वक्त अल्लाह के लिए लगाएं, तो आप कहते हैं नहीं, हमारे पास वक्त नहीं है। तो वक्त का मालिक तो आपने खुद को समझ लिया ना फिर, वरना वक्त का मालिक अगर आप अल्लाह को समझते कि ये जो मेरे पास वक्त है इसका मालिक तो अल्लाह है, ये वक्त, ये जो जिंदगी मुझे दी है ये तो अल्लाह की अमानत है, तो जहां वो कहता है मैं वहां नहीं लगाऊंगी, तो फिर आपने अपने आप को मालिक समझा ना। आप ये कह रही हैं कि नहीं अल्लाह का नहीं है ये मेरा है, इसलिए मैं अपनी मर्जी करूंगी, मैं खुद फैसला करूंगी कि मैंने इसको किधर लगाना है। ये जो हमें फैसले करने में, डिसीजन मेक करने में मुश्किल आती है ना, कि मैं अपनी एनर्जीज कहाँ लगाऊं, मैं अपने पैसों को कहाँ लगाऊं, मैं अपनी स्किल्स को कहाँ लगाऊं, वो इसलिए आती है कि जब हम इन सब चीजों को अपनी मिल्कियत समझते हैं, अगर हम ये समझेंगे कि ये मालिक की हैं, तो फिर मुश्किल नहीं आएगी, फिर उसके रास्ते में ही लगेंगे। अब कंपनी ने गाड़ी दी है तो कंपनी के काम के लिए तो आप यूज ना करें और कहें कि नहीं वो वहां के लिए नहीं, मैं तो अपनी और कामों के लिए यूज करूंगी, ऐसे तो नहीं हो सकते। तो हम वैसे तो कहते हैं हर चीज का मालिक अल्लाह है, हर चीज उसने दी हुई है, पर जहां कुछ लगाने का मामला आता है तो कहते हैं क्यों, मेरी जिंदगी है, मेरा टाइम है, मेरे बच्चे हैं, मेरे पैसे हैं। अल्लाह कहता है सबका मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला तो कहते हैं कि तुम तो ये कह दो, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी तो नमाज, मेरी तो कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे अल्लाह रब्बिल आलमीन के लिए। यही ईमान है ना। इंसान कहता क्यों, मैं क्यों दूं, मेरी जिंदगी, मालिक तो आप खुद बन बैठे हैं। तो याद रखो, हुआ तो आइज्जु मन तशाओ, और इज्जत का मालिक भी वही है, इज्जत के खजाने भी उसके पास हैं, वो जिसको चाहता है इज्जत देता है। इन्नल इज्जत लिल्लाही जमीआ, बेशक इज्जत सारी की सारी अल्लाह के पास है। आप देख लें, इसीलिए अबू जहल इतना बड़ा इज्जत वाला बना फिरता था, दो बच्चों ने उसको कत्ल किया और उसकी लाश एक कुएं में पड़ी हुई थी, और अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से मिस्र के इकतदार पे पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे हैं, लग ऐसे रहा है कि शायद दर बदर हो रहे हैं, मगर अल्लाह ने इज्जतों के दरवाजे खोल दिए। कितनी इज्जत मिली कि आपसे ज्यादा इज्जत वाला तो कोई है ही नहीं, सिर्फ 8 साल के बाद उसी जगह को फतह कर रहे हैं। इज्जत जिसको चाहे दे और जिसको चाहे जलील कर दे। तो यही चीजें हम अपने लिए चाहते हैं ना, इज्जत चाहते हैं, जिल्लत से बचना चाहते हैं, बाचात के छिनने से बचना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ जाओ, ये सब चीज वहां से मिलेगी। बियदिकल खैर, सारी भलाई है अल्लाह तेरे हाथ में है। यही जो मैं अभी बात कह रही हूं ना कि खजाने सारे उसके हाथ में, खैर के खजाने उसके हाथ में, जिसको चाहे खैर दे दे, जिसको खैर चाहिए ना, भलाई चाहिए, वो उसी से मांग ले। और दूसरा मतलब इसका क्या है, तेरे हाथ में खैर ही खैर है, अल्लाह तू जो करता है ना उसमें खैर है। हमें चाहे उसके अंदर कोई शर नजर आ रहा हो, हमें चाहे उसके अंदर कोई ऐसी बात नजर आ रही हो कि ये तो सही नहीं, इसके अंदर तो कोई, मुझे तो समझ नहीं आती कि इसमें क्या खैर हो सकती है, कहीं कई दफा ऐसे होता है ना, किसी की डेथ हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की जॉब चली जाती है। हम कहते हैं इसमें क्या भला खैर हो सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया बियदी कल खैर, तुम ये कह दो कि अल्लाह सारी भलाई तेरे हाथ में, तेरी तरफ से भलाई भलाई होती है। मोमिन के लिए उसके हर वाके में, हर काम में अल्लाह ताला खैर ही डाल देता है, चाहे वो अपने लिए उसको बुराई समझता हो। आसान तकराहु शैअन वह हुआ खैरुल लकुम, हो सकता है तुम किसी चीज को अपने लिए बुरा समझो लेकिन उसी में तुम्हारे लिए खैर है। जैसे सूरह कहफ आप पढ़ते हैं, देखते हैं ना उसके अंदर कैसे अल्लाह ताला ने एक बच्चे को मौत दे दी तो उसमें भी माँ बाप के लिए खैर थी। क्या एक कश्ती को तोड़ दिया गया, उसमें कश्ती वालों के लिए खैर थी, लेकिन बजाहिर तो सारे शर के काम नजर आ रहे थे। तो किसी चीज के पीछे क्या खैर है हम नहीं जान सकते। हमारी शायद सारी जिंदगी हमें समझ ना आए, मगर हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि बियदी कल खैर। हम शॉर्ट साइटेड है ना, हमें तुम्हारी नजर देखें कितनी थोड़ा सा देख सकती, सामने की दो चार चीजों को। अल्लाह की नजर आखिर तक देखती है, उसको पता है। तो इसलिए ये यकीन हमारे अंदर होना चाहिए कि बियदी कल खैर, कभी भी ना ये सोचें कि इसमें क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन आपके जहन में आने लगे, बस बियदी कल खैर। इन्नक आला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक के वो हर चीज पर कादिर है, हर चीज देने पर कादिर है, लेने पर कादिर है। वो क्या कर सकता है, किस हद तक कर सकता है, लिमिटलेस। उसकी ताकत का, उसकी कुदरत का ना हम तसव्वुर नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, हम पहुंच ही नहीं सकते वहां तक कि उसकी कुदरत किधर तक जाती। इसीलिए हम कहते थे अला कुल्ली शैइन। अब आप देख लें हमारे कॉन्सेप्ट, ये देखिए ये बोलना ना बड़ा आसान है, ये आयत को अरे बड़ी प्यारी भी लगती है, इसका जो रिदम है वो इतना खूबसूरत है ना, हम अगर इसको याद आप करें ना, ब्यूटीफुल आयत। लेकिन इसका अकीदा, इसका यकीन दिल में बिठाना, ये इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसान इंसानों की तरफ देखता है इज्जत पाने के लिए, उनके साथ ताल्लुकात बनाता है, पैसे वालों के साथ उठता बैठता है। अगर कोई जरा सी बात कह दे तो सोचता है कि मेरी इज्जत चली गई, मेरी इंसल्ट हो गई। क्या वो ये फिर वाकई समझता है कि इज्जत अल्लाह के हाथ में? नहीं, हम तो समझते हैं इज्जत इंसानों के हाथों में, अरे मैं इंसानों की नजर में इज्जत वाली बन गई तो मैं इज्जत वाली, उन इंसानों ने मुझे कुछ बुरा कह दिया तो मैं बुरी हो गई। नहीं, अल्लाह के हाथ में इज्जत, जिसको चाहे मुअज्जज कर दे। बिलाल हबशी हैं, गुलाम हैं, इतना टॉर्चर बर्दाश्त कर रहे हैं उनके ऊपर, जो जो उनका आका था वो इतना तशद्दुद करता था, इतना मारता था। अब कोई देखने वाला कहे कि ओह ये तो जलील हो रहा है, नहीं, उनसे ज्यादा इज्जत वाला कौन हो सकता है, जिनके कदमों की चाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आगे आगे सुनी। फरमाया बिलाल जब मेराज पे गए थे, बिलाल मैंने तुम्हारे कदमों की चाप अपने आगे सुनी है। सुभान अल्लाह, इतनी ऊंची उड़ान हो गई उनकी, हालांकि गुलाम है, हालांकि काले हैं, हबशी हैं। इज्जत अल्लाह के पास है, वो जिसको चाहे दे। आज लोग फखर से अपने बच्चों का नाम बिलाल रखते हैं, क्योंकि वो इज्जतों वाले थे। तो इज्जतें किसी के रंग से, किसी के पैसे से, किसी की चीजों से नहीं होती। इज्जत वो है जिसको अल्लाह इज्जत दे दे, और जिसको अल्लाह जलील कर दे, जो उसके यहां जलील हो गया ना, वो चाहे जितने भी पैसे वाला हो। फिरौन को देख ले, किसी ने कभी अपने बच्चे का नाम प्यार से फिरौन रखा, नमरूद रखा? बड़ी बड़ी बादशाहतें इनको मिली, रखना चाहिए था, क्यों नहीं रखा? इसलिए कि इनको इज्जत नहीं मिली, इनको जिल्लत मिली। इतना कुछ हो के भी इनको जलील होना पड़ा दुनिया में। तो इज्जत और जिल्लत अल्लाह की नजर में देखो कि अल्लाह की नजर में किसको इज्जत मिलती है, वही इज्जत वाला है। और नहीं मिली मालिक की नजर में, नहीं मिली तो वो जलील है। तो देखना फिर क्या है हमें कि मालिक मुझे कैसा देख रहा है, मालिक की नजर में मैं कैसी हूं। अगर कोई दो चार आपको बातें सुना देता है, उस पर रोने ना बैठ जाए, आए मैं तो जलील हो गई, हाय मेरी तो इंसल्ट हो गई। नहीं, इंसल्ट नहीं हुई, अपने आप को अल्लाह की नजर में देखें। पैगंबरों को इतनी बातें सुनाई गई, अल्लाह माफ करे नाउजु बिल्ला, क्या उनकी इज्जत में कोई कमी आ गई? नहीं, नूह अलैहिस्सलाम को मार मार के इतना मारते थे, इतना मारते थे लोग कि वो बेहोश होके गिर पड़ते थे तो उठा के उनको उनके घर के आगे फेंक जाते थे। तो आप इससे अंदाजा लगाएं। अब देखने वाला क्या कहेगा, क्या इसमें जिल्लत है? नहीं, नूह अलैहिस्सलाम उलुल अज़्म पैगंबरों में से है। तो याद रखिए, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाँ देखिए। इसीलिए दुआ किया करें, अल्लाह जमीन के ऊपर जब तक रखना तो इज्जत से रखना, और जमीन के नीचे भी इज्जत से ही लेके जाना, क्योंकि तेरे पास है सारी इज्जत। अल्लाह ताला देखे हमारे ईमान को ना, जो खोल खोल के सामने रख देता है, देखो चेक करो अपने ईमान को, किधर तुम इज्जतें तलाश करते हो, किन की तरफ देखते हो इज्जतों के लिए। अल्लाह की मशीयत से मिलती है ये, उससे मांगो ना, उसकी इजाजत के बगैर किसी को नहीं मिल सकती। चाहे आपको 100% लग रहा हो कि फलां मुझे देगा, नहीं, कोई नहीं दे सकता। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, तूलिजुल लैला फिन नहार, तू दाखिल करता है रात को दिन में। इतनी बड़ी कायनात में एक चेंज आती है, ये जो रात दिन में दाखिल हो रही है, यानी दिन घट रहा है रात बढ़ रही है, और फिर तूलिजुन नहारा फिल लैल, तू दाखिल करता है दिन को रात में। हर रोज ये चेंज आ रहा है ना, रोशनी अंधेरे में बदल रही है, और अंधेरा बिल्कुल स्याह अंधेरा है। कभी कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि इतने काले स्याह आसमान के ऊपर कभी सफेदी हो सकती, काला कपड़ा भी आपने सफेद करना हो बड़ा मुश्किल है, स्याह काला कपड़ा, और ये इतना बड़ा आसमान उसके लिए मुश्किल नहीं है। ये इतनी बड़ी चेंज लेकर आ जाता है, कहीं दिन घट रहा है और रात बढ़ रही है, आगे बढ़ते बढ़ते दिन को टेक ओवर कर लेती है, कहीं दिन बढ़ रहा है रात को टेक ओवर कर लेता है, कवर कर लेता है, रात खत्म हो जाती है। जब दिन और रात तुम चेंज ये देखते हो तो तुम्हें किसी की मिल्कियत महसूस होती है? हाँ, कुछ महसूस होता है कि इतनी बड़ी चेंज कौन लेकर आ रहा है, इतने वास्ट वास्ट एरिया पे रोशनी को अंधेरे में कौन चेंज कर रहा है? हाँ, वही तो खुदा है, वही तो अल्लाह है। और किसी का इस पे इख्तियार नहीं है, हम इसको काबू कर सकते हैं? कहीं हमारा दिन पे इख्तियार है ना? दिन पे है ना रात पे है। कई दिन ऐसे होते हैं देखें कि इंसान चाहता है ये दिन लंबे हो जाए, ठहर जाए, कभी ना गुजरे, मगर वो दिन भी गुजर जाता है। और कई दिन और रात ऐसे होते हैं कि दिल चाहता है ये वक्त जल्दी से चला जाए, मगर वो अपनी रफ्तार पे ही चलते रहते हैं। इसी तरह कोई चाहता है मैं अपनी रात को बढ़ा लूं तो नहीं बढ़ा सकता, कोई चाहता है मैं अपना दिन छोटा कर दूं, नहीं कर सकता, सब अल्लाह के इख्तियार में। तो तुम ये देखते हो, ये इतनी बड़ी चेंज जो कायनात में आ रही है, साइंस ने इतनी तरक्की कर रही है, वो दिन और रात को चेंज नहीं कर सके? कभी ऐसा नहीं हुआ कि दिन के बाद दिन ही आ जाए? तो जो अल्लाह इतनी बड़ी चेंज ला सकता है ना, उसके लिए क्या मुश्किल है कि किसी को बादशाहत दे दे या किसी से पल भर में छीन ले, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। चाहे ये किसी इंडिविजुअल के लिए हो या पूरी पूरी कौमें हैं, अल्लाह ताला किसी कौम को उरूज दे देता है, किसी को जवाल दे देता है। आपको नहीं पता किसी को आज इज्जत मिल रही है तो कल को उसको जिल्लत मिल जाए। बड़ी बड़ी एम्पायर्स आपने दुनिया में देखे, बड़े बड़े कौमें आई जिनको अरूज मिला, उसके बाद वो कैसे जवाल पजीर हुई, और कई हैं जो जवाल पे थी वो कैसे उठी। फिर आप ये बताइए, अगर ऐसा ही हो रहा है जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, कोई ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, कोई आज ऊपर है तो कल नीचे है, कोई कल नीचे था तो आज ऊपर है, तो फिर ये मुझे बताएं हम किसी भी नेमत पे, किसी भी मुल्क जो हमें मिला हुआ है, कोई भी हमें कहीं पावर मिली हुई है, क्या अब हम कभी उसको परमानेंट समझ सकते हैं, कभी उसके ऊपर फूल सकते हैं, कभी उस पर अकड़ सकते हैं, कभी उसको हमेशा के लिए अपनी मिल्कियत समझ सकते हैं कि बस मेरा ही है और किसी और को नहीं मिल सकता, बस अब मैं ही हूं, मैं ही मैं हूं? नहीं, दिन के बाद रात भी आ जाती है, याद रखिएगा। और क्या कभी ऐसे होना चाहिए कि किसी के ऊपर गम है, परेशानी है, तो वो मायूस हो जाए, हाय अब तो कभी मेरे दिन बदलेंगे ही नहीं, अब तो कभी कुछ होगा ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, रात के बाद दिन भी आता है, अल्लाह गम के बाद खुशी लाता है, मायूसी के अंधेरों के बाद उम्मीद दिलाता है, और खुशी के बाद गम भी लाता है। तो ना कोई फूल जाए खुशी के दिनों में और अल्लाह की नाफरमानी शुरू कर दे कि अब खुशी आ गई है, तो इतने हम आपे से बाहर हो जाते हैं, खूब अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, खूब नाचते हैं गाते हैं, उल्टे उल्टे हो जाते हैं। ओ ये खुशियां परमानेंट नहीं है, दिनों के बाद रात है, और ना ही कोई इतना गम में पागल हो जाए कि अल्लाह से ही मायूस हो जाए। नहीं, क्यों मायूस होते हो, रात के बाद दिन भी आना है, ना दिन हमेशा ठहरता है ना रात हमेशा रहती है, बस ये सब इम्तिहान है। खुशी में अल्लाह देख रहा है मैंने क्या किया, गम में देख रहा है मैंने क्या किया, ये सब जो नजर आ रहा है ना वो वैसा नहीं रहता, एक चीज जा रही है तो दूसरी उसके पीछे आ रही है। तो ये हमें बहुत बड़ा सबक दे रही है ये आयतें, बहुत बड़ा सबक, इनमें बहुत गौर करने की बात है, और इनको आप जितना अपने दिल के अंदर बिठाएंगे ना, आप देखें ये आपको, आपके ईमान, आपका भरोसा, आपको एक अल्लाह के ऊपर तवक्कल करना सिखा देती हैं। ये वो आयतें हैं, वो चीजें जो हमें नामुमकिन लगती है ना कि कैसे होगा, कभी ये तो कभी हो ही नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता, क्या अल्लाह रात और दिन नहीं लेकर आ रहा, और तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, और जिंदा को जो मुर्दा से निकाल सकता है और मुर्दा को जो जिंदा से निकालता है, क्या तुम ये नहीं देखते, हय को मुर्दा से कैसे निकालता है? आप ये देखें, मुर्दा है अंडा, उसमें से चूजा निकल आता है, बीज क्या है, मुर्दा है, उसे दरख्त निकल आता है, नुतफा क्या है, मुर्दा है ना, एक मर्द का नुतफा मुर्दा है, उससे क्या निकल आता है, एक जिंदा इंसान बन जाता है। और बाज मुफस्सिरीन ने जिंदा और मुर्दा से मुराद इस्लाम और कुफर लिया, एक बंदा मोमिन है उसके घर एक काफिर पैदा हो जाता है, और एक काफिर है उसके घर एक मोमिन पैदा हो जाता है, काफिर से मोमिन का पैदा होना क्या है, मुर्दा से जिंदा का पैदा हो जाना, सुभान अल्लाह। और जिंदा और मुर्दा को बाज उलमा ने आलिम और जाहिल भी लिया, तू निकालता है जिंदा को यानी आलिम, मुर्दा से निकल आते हैं, कई कई जाहिल पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल अक्ल समझ नहीं है, इनका कुछ पता नहीं, उनसे आलिम पैदा हो जाते हैं, और तो खुरिजुल मय्यिता मिनल हय, और मुर्दा को यानी जाहिलों को जिंदों से, बड़े बड़े आलिम होते हैं और उनकी औलादें ऐसी बिल्कुल जहालत की उनके अंदर होती है, तो ऐसा भी होता है, और मुर्दा को जिंदा से, वैसे ही आप क्या देखें कि इंसान जिंदा है उसे मुर्दा हो जाता है वो, या मुर्दा बच्चा भी पैदा हो जाता है, तो हर जिंदगी मौत की तरफ बढ़ रही है और हर मौत से जिंदगी निकल रही है, सुभान अल्लाह। जिंदा जिस्म में कैसे मौत सरायत कर जाती है, आपने कभी सोचा कि हमारी स्किन जो है कट जाती है, उसके ऊपर नई स्किन, जिंदा स्किन आ जाती है। हमारे डेड सेल्स, रोज सेल्स डेड होते हैं और उनकी जगह जिंदा सेल्स बनते हैं। मुसलसल ये हो रहा है। तो अल्लाह ताला का ये निजाम कैसा चल रहा है? अल्लाह ताला कैसे, कितनी कुदरत का मालिक है जो ऐसे चेंज ला रहा है? और फिर सिर्फ ये जिंदगी ही नहीं देता वो, इनको रिस्क, रोजी, सब चीजें इनको देना अल्लाह का काम है, उसकी इख्तियार में है और उसकी जिम्मेदारी है। और इंसान ने इतनी जायदाद की, आज तक मुर्दा से जिंदा को पैदा नहीं कर सका। तो अल्लाह ताला ऐसी कुदरत वाला है। तो तुम भी ये ना समझो कि कोई चीज नहीं हो सकती। हर किस्म की बात, हर किस्म की ताकत अल्लाह के इख्तियार में। तो फिर हमें इज्जत चाहिए तो किसके पास जाएंगे? हमें कोई इख्तियार चाहिए तो किसके पास जाएंगे? हम गम में हैं, पिस रहे हैं, तो कौन हमारी रात को दिन में बदल सकता है? कौन हमारी जिंदगी के अंधेरों को रोशनी में बदल सकता है? ये उसके इख्तियार में, उसके हाथ में है। किसी के दर पे ये नहीं मिलता, किसी कब्र में ये नहीं मिलता, किसी जगह पे ये नहीं मिलेगा। वतरजुकु मा तशाउ, और तू रिस्क देता है जिसको तू चाहता है, बेगैरी हिसाब, बगैर हिसाब के। रिस्क भी तेरे हाथ में, सारी भलाई तेरे हाथ में। फिर लोगों से मुझे क्या मांगना और उनसे क्या डरना और उनके पीछे पीछे क्या मिन्नतें करना? सारा रिस्क तेरे, रिस्क के खजाने भी तेरे पास में। और देखे रिस्क में आप ना बिल्कुल लिमिटेड ना हो जाएं, कि हम सोचते हैं रिस्क मींस के पैसा। पैसा भी है रिस्क, वो भी जिसको चाहता है बगैर हिसाब के देता है। आप देखें अंगूठा छाप लोग हैं, उनके पास इतना पैसा है गिनने का भी नहीं उनको पता होता। लैंग्वेज भी नहीं कईयों को आती कि क्या लैंग्वेज है बोलनी उस मुल्क में, लेकिन इतना पैसा है तो जिसको मर्जी चाहे दे, उसके ऊपर खजाने खोल दे अपने रिस्क के। और बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले डिग्रियां ले लेके उनकी जूतियां चटक जाती हैं, लेकिन उनको कोई नौकरी नहीं मिलती। तो उसके पास है रिस्क के खजाने, जिसको चाहे बगैर हिसाब के दे। और इसमें फिर क्या और चीजें आ जाती हैं? रिस्क में मैंने आपको सूरह बकरा जब स्टार्ट हो रही थी तो बताया था, रिस्क में जो भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमते हैं ना, वो सभी आ जाती हैं। सेहत भी रिस्क है, आपका अल्लाह ताला ने जो जिस्मानी कुव्वत दी हुई है वो भी रिस्क है। जहनी, आपको जहन आपको अच्छा दिया हुआ है, जो आपको आपकी जहानत है वो भी रिस्क है। किसी को खूबसूरती दे दी है वो भी रिस्क है। ये सब रिस्क है, जिसको चाहे बगैर हिसाब किताब के दे दे। फिर हम कौन होते हैं ये सवाल करने वाले, उसके पास इतना क्यों है, पता नहीं उसको कैसे मिल गया, इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए था। नहीं, ये अल्लाह के फैसले हैं, ये उसके फैसले हैं। हर फैसले के पीछे उसकी मशीयत है। तो फिर हम तो इतराज नहीं कर सकते ना, और ना ही हम किसी और के आगे हाथ फैलाएं। अल्लाह ने एक दर का भिखारी बना दिया और वो उसका दर है। सारे दर छोड़ दो, उसके पास आओ। तो जिसको जो भी चाहिए, जिस तरह का भी रिस्क चाहिए, वो बेहिसाब देने के लिए, तो उससे मांगो, उससे लो। उसके हाथ में। अब इस आयत का थोड़ा सा शाने नजूल भी देख लेते हैं कि ये कब नाजिल हुई, किस वक्त में नाजिल हुई। इसका शाने नजूल के बारे में कहा जाता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह किया और आपने अपनी उम्मत से रोम और फारस की सल्तनतों का वादा किया, तो यहूदियों और मुनाफिकों ने कहा, कहाँ रोम और फारस के मुल्क और कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह बात तो बड़ी दूर की है। और एक और रिवायत भी आती है कि जब जंगे अहज़ाब हुई थी ना, तो उससे पहले आपको पता है खंदक खोदी गई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के निशान लगाए, हर 10-10 आदमियों की जमात को 40-40 हाथ, समझ लें 40 फुट तक खंदक खोदने का हुक्म दिया। तो उस वक्त कोई क्रेने या ये तो होती नहीं थी, तो बंदों ने खुद खोदनी थी, और भूख भी थी और खौफ भी था, और कितनी उस वक्त लोगों के ऊपर एक ऐसा सख्त वक्त था। तो उस वक्त खंदक खोदते खोदते एक ऐसी चट्टान आई जो किसी कुदाल से किसी फावड़े से नहीं टूटती थी। तब सहाबा कराम ने हज़रत सलमान फारसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, और उन्होंने आकर आपको बताया कि ऐसे नहीं एक पत्थर टूट रहा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सलमान के हाथ से कुदाल लेके चट्टान पर एक ज़र्ब लगाई, तो आपकी ज़र्ब से चिंगारियाँ उड़ी और अंधेरी रात में बिजली की तरह रोशनी पैदा हुई। आपने नारा तकबीर बुलंद किया, मुसलमानों ने भी बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रोशनी में मुझे हीरा के मोहल्लात नजर आ रहे हैं। फिर आपने दूसरी जरब लगाई, फरमाया इस रोशनी में मुझे रोम के मोहल्लात नजर आ रहे हैं। आपको पता, रोम फारस उस वक्त ना सुपर पावर्स थी, जिनको सुपर पावर सो कॉल्ड दुनिया में सुपर पावर कहते हैं, वैसे तो अल्लाह ही की पावर है जो सुपर पावर है, लेकिन दुनिया में ये टर्म्स इस्तेमाल होते हैं। तो रोम को ना बड़ी एक बिग पावर थी। तो फिर तीसरी जरब लगाई, फरमाया इस रोशनी में मुझे सनआ के यमन के मोहल्लात नजर आते हैं, और मुझे जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आके खबर दी है कि मेरी उम्मत इन सारे मुल्कों पे काबिज होगी और गालिब होगी, सो तुम्हें खुशखबरी हो। अब ये सुन के मुनाफिकीन जो थे वो तो हंसने लगे कि ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा, तो उनको अपने नबी पे हैरत नहीं होती, वो तुमसे झूठे वादे करता है, वो तुम्हें ये खबर दे रहा है कि वो यसरब से हीरा और मदाइन और कसरा, फैसर और कसरा है ना, उनके मोहल्लात को देख रहा है और वो मुल्क तुम्हारे लिए फतेह होंगे, हालांकि तुम मारे खौफ के खदके खोद रहे। तुम्हारा तो हाल ये है, भूखे हैं प्यासे हैं, और देखिए आप 10-10 लोगों को 40-40 हाथ खंदके खोदनी है, ना दिन का पता है ना रात का पता है, ना खाने का होश ना पीने का होश ना आराम मिल रहा है, और खाने पीने का कुछ था ही नहीं, पेटों पे पत्थर बांधे हुए थे। तो वो हंसने लगे ना, फिर देखो जरा तुम मारे खौफ के खंदके खोदने लगे हुए हो, ये तुम्हें उस उधर की भाई खुशखबरियां देने लगे हुए, और तुम में इतनी ताकत कहाँ है कि इन खंदकों से बाहर निकल के अपने दुश्मनों का मुकाबला ही कर सको, तो तुम्हें तो ये इतनी नहीं ताकत है, तो तुम कहाँ रोम और फारिस और इनके ख्वाब देखने लगे। तो तब ये आयत नाजिल हुई थी कि अल्लाह है जिसको चाहे बादशाहत दे दे, जिससे चाहे छीन ले। तो अब ये देख लें कि वाकई फिर उसके बाद क्या हुआ, मक्का फतह हो गया था, और अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये दुआ सिखाई है। हालांकि आप वैसे देखें तो इसमें मांगा कुछ नहीं गया, और करें ना, इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया, सिर्फ ये कहा गया अल्लाह तेरे हाथ में, सब तेरा इख्तियार है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को ये दुआ सिखा दी, क्योंकि अब जो था वो इख्तदार शिफ्ट होने वाला था। नबुवत तो मिल गई, नबुवत मुंतकिल हो गई, ये उम्मत भी आपको देखे नई उम्मत ये बन गई, उम्मत मुस्लिमा को अब वो ओहदा मिल गया, किबला भी चेंज हो गया, बैतुल मकदस से बैतुल्ला बन गया, इमामत उनसे इनको मिल गई। अब ये और एक इख्तदार मिलना जो कुफार से मुसलमानों की तरफ आ रहा है, तो अब ये दुआ सिखा दी गई कि अब ये दुआ मांगो, अल्लाह ताला अपने नबी को जो कुछ देना चाहता है ना, पहले उसके लिए अल्लाह ताला दुआ सिखा देते हैं। जैसे जब हिजरत का हुक्म आने वाला था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ सिखा दी अल्लाह ताला ने कि आप दुआ करें, कुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकिन व अखरिजनी मुखराजा सिदकिन व जालनी मिन लदुनका सुल्ताना नसीरा, ये सूरह इसरा में कि ये दुआ है नबी, ये दुआ किया करें आप। तो अब जब ये मक्का फतह होना था इसके बाद, तो अब ये दुआ किया करें, बादशाहत इज्जत जिल्लत तू अता फरमाता है, तू जब रात को दिन बना सकता है, दिन को रात बना सकता है, तो अल्लाह तू कब तक हमें इस गुर्बत में, इस हिजरत के आलम में, इस फकर के आलम में रखेगा, हमें भी इस दुनिया का इक्तदार नसीब कर दे। तो जब मुर्दे को जिंदा बना सकता है, जिंदा को मुर्दा कर सकता है, मुर्दे में भी अल्लाह ही जान डालता है ना, तो अल्लाह हम जिंदों में भी जान डाल दे। तो बहुत स्ट्रांग है ये दुआ। और फिर उसके बाद वही हुआ जो हिस्ट्री ने देखा, मक्का फतह हुआ, मुसलमानों को इक्तदार मिला, वो अल्लाह ताला ने फिर वो कर दिखाया। ये बहुत प्यारी दुआ है इस लिहाज से। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।